दिन भर तारीख 29 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। मायावती को अपशब्द कहने वाले बीजेपी के निष्कासित नेता दयाशंकर गिरफ्तार किए गए बिहार से।
आज एसटीएफ और जिला पुलिस लखनऊ की टीम ने मिलकर बिहार में बक्सर जिले में उनको गिरफ्तार किया है।
इंडोनेशिया में मौत की सजा पाने वाले 14 लोगों में से शामिल एक भारतीय की मौत की सजा टली। चलो रियो में सुनिए कि अगर कर्णम मलेश्वरी ने 2.5 किलो वजन कम भी उठाया होता तब भी वो जीत सकती थी सिडनी में स्वर्ण पदक।
लास्ट लिफ्ट होती है ना, वो मैक्सिमम 2.5 kg, बहुत ही ज्यादा 5 kg, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। अगर मैं 32 करती तो भी मेरा गोल्ड था, अगर 35 करती तो भी मेरा गोल्ड था।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में भाजपा से निष्कासित दया शंकर सिंह को बिहार के बक्सर से गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि की है। मायावती के लिए अपशब्द कहने वाले दयाशंकर सिंह को भाजपा ने पार्टी से बाहर कर दिया था। दयाशंकर सिंह को उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोमांस रखने के आरोप में मुस्लिम महिलाओं की पिटाई के मामले में आज लोकसभा में हंगामा हुआ, जिस पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोषियों को सजा दी जाएगी।
जिस घटना का इन्होंने उल्लेख किया है उस घटना के संबंध में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और प्रभावी कार्रवाई की है अध्यक्ष महोदय, और पूरे मामले की जांच हो रही है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे सदन को, इसमें इंसाफ होगा, न्याय होगा और जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे।
ये थे लोकसभा में राजनाथ सिंह। मध्य प्रदेश के मंदसौर रेलवे स्टेशन पर गोमांस तस्करी के आरोप में 2 महिलाओं को पीटा गया था। पुलिस ने भी महिलाओं पर ही मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पुलिस जांच में पाया गया कि मांस गाय का नहीं बल्कि भैंस का था। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है जिन्हें तुरंत जमानत दे दी गई थी। महाराष्ट्र के पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरने से 8 मजदूरों की मौत हो गई है। पुलिस ने कहा है कि पुणे में 13 मंजिला इमारत में सीमेंट की स्लैब गिर जाने से यह हादसा हुआ। मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। तुर्की में 21 पत्रकारों को नाकाम तख्तापलट के मामले में इस्तांबुल की एक अदालत में पेश किया गया है। वहीं पुलिस अन्य 20 पत्रकारों की तलाश कर रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि जो देश तुर्की में की जा रही गिरफ्तारियों की निंदा कर रहे हैं उन्हें तख्तापलट को नाकाम करने के लिए तुर्की की तारीफ करनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने तख्तापलट में शामिल सैनिकों के सैनिक बेस बंद करने का आदेश दिया है। तख्तापलट की कोशिश के बाद अब तक तुर्की में 1000 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं तुर्की की सरकार ने नाइजीरिया से उन स्कूलों को बंद करने को कहा है जिनका संबंध धार्मिक प्रचारक फतेहुल्ला गुलेन से है। तुर्की ने तख्तापलट की कोशिश के लिए अमेरिका में रहने वाले फतेहुल्ला गुलेन को जिम्मेदार ठहराया है। नाइजीरिया में तुर्की के राजदूत ने कहा कि उन्होंने 17 स्कूलों को बंद करने की अपील की है जिन्हें अवैध फंडिंग के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरिया के अलप्पो शहर में लंबा युद्ध विराम लागू किए जाने से ही शहर से लोगों को बाहर निकालने का मौका मिल सकेगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम भारत से कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह को आज बिहार से गिरफ्तार किया गया। ये वही दयाशंकर सिंह हैं जिन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती के खिलाफ अपशब्द कहे थे और बीएसपी प्रदर्शन कर रही थी, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। दयाशंकर सिंह को यूपी एसटीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने आज गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दलजीत चौधरी ने बताया।
दयाशंकर के खिलाफ एक एफआईआर थाना हजरतगंज जिला लखनऊ में पंजीकृत थी। उसकी तलाश में लगातार लखनऊ पुलिस थी। फिलहाल एक एनबीडब्ल्यूबी कोर्ट से इशू हुआ था उनकी गिरफ्तारी हेतु। आज एसटीएफ और जिला पुलिस लखनऊ की टीम ने मिलकर बिहार में बक्सर जिले में उनको गिरफ्तार किया है और अब उन्हें बहुत जल्दी हम संबंधित कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं।
ये थे उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दलजीत चौधरी। उनकी गिरफ्तारी किस तरह से हुई, सीधे कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं अपने सहयोगी नीरज सहाय को। नीरज सहाय, बताएं कि किस तरह से दया शंकर सिंह की गिरफ्तारी हुई और कहां से हुई।
देखिए मोहनलाल जी, सबसे पहले ये बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के विरुद्ध विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को शुक्रवार को दोपहर को बिहार के बक्सर से गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर यह भी आ रही है कि बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम कल रात मिली उनके
माफ कीजिएगा, हम आपकी आवाज बहुत साफ तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम आपको एक पूरा विस्तृत ब्यौरा हम आपसे सुनेंगे। सीधे कार्यक्रम में हम रुक करते हैं समीर आत्मज मिश्र का, जो कि लखनऊ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। समीर, जैसा कि अभी नीरज सहाय बता रहे थे कि बिहार में बक्सर जिले में दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी हुई, दयाशंकर सिंह को लेकर जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और खुद मायावती ने भी उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी, अब उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो किस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में हैं?
जी मोहनलाल जी, गिरफ्तारी की तो जाहिर सी बात है, इसी मुद्दे पर पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन से ये पूरी राजनीति यहाँ पे चल रही है। अभी आधिकारिक तौर पर तो किसी की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों ने, जो खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी की है, उनके कुछ एक नेताओं से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि हम तो इसकी काफी पहले से मांग कर रहे थे। उनका आरोप था कि दयाशंकर सिंह को चाहते तो ये अगले दिन ही गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन जानबूझ करके सरकार ने नहीं गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर इस गिरफ्तारी पे बीजेपी का ये कहना है कि भाई अब आपने दयाशंकर सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया, और लेकिन हमारा जो आरोप है और उससे भी ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था बीएसपी की रैली में, बहुजन समाज पार्टी की रैली में, और उसके जो जिसको ये लोग मुख्य अभियुक्त कह रहे हैं बीएसपी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तो उन पर उनकी गिरफ्तारी का भी ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब दबाव बहुत तेजी से बनाया जा रहा है। कल भी यहाँ की महिला मोर्चा के उस पर ये पूरा प्रदर्शन किया था और काफी यहाँ पे भीड़ जुटाई थी। तो ये चीज जो है भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच में जो ये टसल चल रही थी गिरफ्तारी को लेकर के, तो सरकार ने तो सरकार अपनी पीठ ठोक रही है कि उसने भाई वहां पे गिरफ्तार किया इनको, भले ही बिहार पुलिस की मदद से, चूंकि बिहार में ये थे तो बिहार पुलिस की मदद से उनको गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच में अभी टकराव की स्थिति खत्म नहीं हुई है। और अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर या उनके खिलाफ कार्रवाई पर दबाव सरकार की तरफ बढ़ता जा रहा है।
जी, आपकी टेलीफोन लाइन भी खराब थी, और इस बीच फिर से कार्यक्रम में हम नीरज सहाय को शामिल कर रहे हैं। नीरज, आप अपनी बात कह रहे थे और बता रहे थे कि बक्सर में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो किस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई।
देखिए मोहनलाल जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ कल शाम से ही दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बक्सर में डेरा डाले हुई थी, और आज दोपहर लगभग 2 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की पुष्टि बक्सर के आरक्षी उप अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा ने भी की। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस गिरफ्तारी को आज एक अमली जामा पहना दिया गया है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सहाय सीधे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। इंडोनेशिया में ड्रग्स के मामले में मौत की सजा पाने वाले 14 लोगों में शामिल एक भारतीय की मौत की सजा टल गई है, जबकि 4 को कल रात मृत्युदंड दे दिया गया। जिस भारतीय को ये सजा दी जानी थी उनका नाम गुरदीप सिंह है और वो पंजाब के रहने वाले हैं। हालांकि गुरदीप के परिवार को अभी किसी तरह की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि आगे अब इस मुद्दे पर क्या होगा। सुनिए अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है कि उन्हें भारतीय राजदूत ने यह जानकारी दी है कि गुरदीप सिंह को मौत की सजा नहीं दी गई और जो कि बीती रात देनी तय थी। गुरदीप सिंह का नाम उन 14 दोषियों की सूची में था जिन्हें मौत की सजा दी जानी थी। गुरदीप सिंह इंडोनेशिया की जेल में 2004 से हैं और उन्हें ड्रग तस्करी के मामले में 2005 में मौत की सजा सुनाई गई थी। गुरदीप के परिवार वालों को बीते दिन भारतीय दूतावास से संदेश दिया गया था कि गुरदीप सिंह को 29 जुलाई की रात गोली मार दी जाएगी। इसके चलते परिवार वालों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई थी। गुरदीप की धर्मपत्नी कुलविंदर कौर गुरदीप की सजा टलने का पूरा श्रेय सुषमा स्वराज को देती हैं। उनका कहना था,
सुबह 8:30 बजे फोन आया तो कहंदे मैं ठीक है, मैं बच गया। कहंदे सुषमा स्वराज ने जो भी है ना मतलब मदद साडी कीती ते मीडिया वाले ने कहंदे सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद करना, अगे भी मेनू इंडिया ले आउण दी कोशिश सारे रल के इदे कर। मैं मैडम का ही धन्यवाद करूंगी और मीडिया वाले का, उन्होंने जिन्होंने मेरे लिए इतनी दौड़ भज की और गुरदीप को बचाया।
इसके बाद गुरदीप ने अपने परिवार वालों के साथ टेलीफोन पे बातचीत भी की। गुरदीप के साथ बातचीत के बारे में बताते हुए उनके भांजे गुरपाल सिंह ने बताया,
उन्होंने बताया कि आखिरी मिनट थे वो, आखिरी मिनटों पर उनको मालूम पड़ा कि उनकी जो सजा है वो रद्द कर दी गई है। ये नहीं है कि वापस कब आ रहे हैं, अभी तो वहाँ की जो एम्बेसी है उन्होंने भी कोर्ट में जो अपील की है माफी की, उसके बाद ही पता लगेगा जो भी लगेगा।
बताते चले कि गुरदीप पैसा कमाने के लिए बाहर के देश में सेटल होना चाहते थे, जिसके चलते वह किसी ट्रेवल एजेंट के चुंगल में फंस गए और न्यूजीलैंड का झांसा देकर ट्रेवल एजेंट ने उन्हें इंडोनेशिया ले आया, जहां पर वे ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हो गए और 2005 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर बेहतर नौकरी पाने के लालच में पंजाब के बहुत से नौजवान नकली ट्रेवल एजेंट्स के चुंगल में फंस जाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं।
ये थी रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या मीडिया का राष्ट्रवादी होना जरूरी है या निष्पक्ष? टेलीविजन के दो पत्रकारों के बीच इस सवाल पर पिछले दिनों खुलेआम भिड़ंत हो गई। एक ने कहा पाकिस्तान परस्त पत्रकारों को सबक सिखाया जाना चाहिए, तो दूसरे ने इसे सरकार की चमचागिरी करार दिया। मगर क्या आप मानते हैं कि मीडिया को राष्ट्रवादी होना चाहिए? इस शनिवार 30 जुलाई को इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब हमारी विशेष पेशकश, चलो रियो की 10वीं और अंतिम कड़ी में आज सुनिए कि अगर कर्णम मल्लेश्वरी ने 2.5 किलो वजन कम उठाया होता तो भी वो जीत सकती थी सिडनी में स्वर्ण पदक। और आपको ये भी बताएंगे कि बीजिंग में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद भी अभिनव बिंद्रा ने क्यों नहीं किया खुशी का इजहार। सुनिए रेहान फजल से।
चलो रियो में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। तब तक एवरेस्ट पर एक भारतीय महिला कदम रख चुकी थी, महिलाएं वायुसेना में हेलीकॉप्टर भी उड़ाने लगी थी, एक महिला भारत की प्रधानमंत्री भी बन चुकी थी, लेकिन किसी भारतीय महिला को ओलंपिक में पदक जीतना नसीब नहीं हुआ था। ये कारनामा अंजाम दिया श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में जन्मी कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में 69 किलो वर्ग के भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर। कर्णम मल्लेश्वरी को वो दिन अभी भी याद है जब प्रतियोगिता से एक दिन पहले उनके बेलारूसियन कोच लियोनिद तारानेन कोहे उनके कमरे में आए थे।
जिस दिन मेरा कंपटीशन था उससे पहले रात मेरे कोच आए मेरे पास, मेरे को बोला उन्होंने कि भी आपको सोना है, नेक्स्ट डे आपके कंपटीशन है, आपको नींद बड़ा मुश्किल से आती है, आना जरूरी है। तो मैं लेटी हुई थी एंड कुछ दूसरे प्लेयर्स थे जो वहां बैठ के बातें कर रहे थे, देन मेरा कोच दोबारा राउंड लेने आए तो लाइट जली हुई थी और मैं लेटी हुई थी और दो गर्ल्स से वो बात कर रहे थे, तो वो इतनी जोर से गुस्सा हो गए उनको भगा दिया वहां से, कह रहे तुम्हारे कंपटीशन हो गए तुम निकलो यहाँ से। फिर मेरा लाइट ऑफ करके मेरा कोच चले गए। देन अगले दिन सुबह मैं उठी हूँ अर्ली मॉर्निंग, अपना पूजा वीजा किया, सूर्य नमस्कार किए, भगवान से प्रार्थना की कि भाई अच्छे दिन निकले मेरे, अच्छा कंपटीशन हो। बाकी जो लोग थे उन्होंने विश किया कि बेस्ट ऑफ लक।
कंपटीशन के दिन मल्लेश्वरी अपनी तरफ से पूरी तरह सहज होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके दिल के भीतर जो बीत रहा था वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वो पहली बार 69 किलो वर्ग में भाग ले रही थी, इससे पहले वो 63 किलो वर्ग में भाग लिया करती थी।
हमने ब्रेकफास्ट नहीं की थी क्योंकि वेइंग बॉडी वेट देना था, तो हम लोग सीधा कंपटीशन में बस में गए। इंटर बस में भी दिमाग में यही कोशिश था कि भी अपना आपको कंट्रोल करना है, ना ज्यादा एक्साइटेड होना है ना ज्यादा नर्वस होना है, काफी ये कोशिश कर रहे थे नॉर्मल हूँ, पर अंदर तो कुछ और ही फीलिंग थी। जब एक बार वेइंग हो जाता है एंड उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, जब अपने किट वगैरह पहन लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ नहीं समझ में आती है। उसके बाद ना किसी की आवाज सुनाई देती है ना कोई दिखाई देता है मुझे।
उस दिन मल्लेश्वरी ने 240 किलो वजन उठाया, स्नैच में 110 किलो और क्लीन और जर्क में 130 किलो, यानी अपने खुद के वजन से लगभग दोगुना। आखिरी लिफ्ट में उनके कोच ने उनसे 137 किलो वजन उठाने के लिए कहा।
दो इवेंट्स होते हैं, स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। जो मेरी स्टार्टिंग वेट थी स्नैच का 105 था, नेक्स्ट 107 था एंड 110, तीनों लिफ्ट मैंने कर लिया था। हंगेरी गर्ल्स जो सेकंड आई है उसने भी उतना ही किया था, चाइनीज गर्ल ने 112 किया, 2.5 kg स्नैच में हमारा डिफरेंसेस था। देन जब क्लीन एंड जर्क आया, उस टाइम में मेरे को नहीं पता होता है कि मेरा कॉम्पिटिटर कितना कर रहा है, लेकिन मेरा कोचेस को पता होता है कि मेरी क्या कैपेसिटी है एंड मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसकी क्या कैपेसिटी है। मेरा जो स्टार्टिंग है वो मुझे दिया 125, जबकि मैंने थोड़ा बोला भी था कि 7 दे दो, बोला नहीं नहीं नो प्रॉब्लम। तो मैं कभी भी ऐसे प्लेयर नहीं रही कि भी आर्गुमेंट करना है ये करना है, जो कोच ने कह दिया दैट्स इट, ठीक है। सेकेंड लिफ्ट मेरा था 130, वो भी मैंने पास किया। कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, जो लास्ट लिफ्ट होती है ना, वो मैक्सिमम 2.5 kg, बहुत ज़्यादा ये है तो 5 kg, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। अगर मैं 32 करती तो भी मेरा गोल था, अगर 35 करती तो भी मेरा गोल था, 37 की जरूरत ही नहीं थी। 132 करने से उन दोनों से मैं बॉडी वेट में लाइटर थी। कई कहते हैं कि भी कोचेस का मिस कैलकुलेशन था, लेकिन मैं नहीं मानती ये चीज को कि भी उन्होंने कोई जानबूझकर मेरा मेडल मिस करा, क्योंकि मेरा कोचेस को ज्यादा कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर। वो ओलंपिक रिकॉर्ड था और उनकी ड्रीम थी कि मैं ओलंपिक रिकॉर्ड करूं, एंड वो 100 दफा मैं हिंदुस्तान में करके गई थी। मैं ये मानती हूँ वो जो डे था वो मेरे लिए इतना लकी नहीं था।
कोच के मिस कैलकुलेशन की वजह से मल्लेश्वरी उस इवेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीत पाई, लेकिन उस प्रतियोगिता को देख रहे पत्रकार नॉरिस प्रीतम के लिए ये एक बड़ी बात थी।
जैसे देखा कि मेडल आया हम तो उछल गए। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये था कि जर्नलिस्ट वहाँ ज्यादा नहीं थे, क्योंकि उस दिन हॉकी का मैच चल रहा था इंडिया का, तो सारे लोग वहाँ थे। मैं था और एक कोई लड़का और था, हम दोनों अगल बगल देख रहे थे कि हम किसको गले मिलके कुछ शेयर करें ये बात बताएं, और हम कर नहीं पा रहे थे। तो जैसे खत्म हुआ फिर मैं स्टेज पे गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, वहां पे भी पूरे दुनिया का जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। खुशी के कई सबब थे, एक तो कि मेडल आया, दूसरा एक लड़की का मेडल आया, तीसरा इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैंडल करा, तो ये सारी बातें मिला के बस यही अफसोस रह गया कि हम वहाँ पे अपना झंडा नहीं हिला सके। जैसे एथलेटिक्स में होता है, जीतते हैं तो लोग विक्ट्री लैप लेते हैं, वेट लिफ्टिंग हॉल में क्या होगा, ज्यादा इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, अब 2-3 बार ताली बज गई।
मैंने कर्णम मल्लेश्वरी से पूछा कि जब आपके कोच ने आखिरी अटेम्प्ट में 137 किलोग्राम वजन उठाने के लिए कहा तो क्या आप झिझकी थी?
बिल्कुल नहीं झिझकी थी, एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। मेरे को एक ही आवाज़ सुनाई थी कि तुमको करना है, मेरा पूरा फोकस था। एंड आपने देखा होगा वो लिफ्ट जो है ना मेरा इतना इजी था, जो क्लीन था, पानी की तरह, कोई प्रेशर नहीं था मेरे पे कि बहुत वजन लग रहा है या बहुत मुश्किल से उठ रही हूँ। इवन जो मेरा कोचेस है वो कहते मेरा क्लीन देखे मैं खड़ी हो गई, मेरा तो जर्क गिर गया नीचे, खड़ी हो गई तो चेनिस जो कोच था वो नीचे बैठ गया था। उनकी भी पॉलिटिक्स थी, क्योंकि जो वेट बढ़ाना था चाह रहे थे मेरा कोचेस शायद चेनिस लड़की पहले जाए। ऐसे करके पहले 32 दिया, फिर 35 दिया, वो 35 दिया तो फिर इन्होंने 37 दिया, इन्होंने 37 दिया तो उसने 140 दी, वो भी चाह रही थी कि पहले हम जाएं। आप लोगों ने देखा होगा 40 वो जाके जस्ट मजाक करके ऐसे उठा के फेंक के आ गई, कि कैपेसिटी था नहीं उसका इतना करने के लिए, लेकिन उसको पता था कि 2.5 kg वो लीड पे है, अगर वो प्रेशर हमारा कोचेस पे डालेगी, जैसे 32 उसने 35 दिया तो कहीं ना कहीं कोचेस आता अगर ये लिफ्ट 35 कर दिया तो हमारा गोल्ड लॉस होगा। कहीं ना कहीं जो मेरा कोचेस है वो जो उनकी गेम है वो कैच नहीं कर पाए। कोचेस ने कहीं ना कहीं ये था मेरा कोचेस को भी इसने किया हुआ है तो रिस्क क्यों लेना है, ठीक है 37 पे चलते हैं, उसके बाद वो नहीं कि गोल्ड हमारा है।
इस प्रतियोगिता में चीन की ली विंग निन को स्वर्ण पदक और हंगरी की अर्सेबेथ मार्कस को रजत पदक मिला। पदक की घोषणा होते ही नॉरिस प्रीतम स्टेज पर चढ़ गए थे।
उस वक्त हम बैठे हुए थे और सारा प्रोटोकॉल तोड़ के हम सब इंडियन स्टेज पे भाग गए थे, और वहां पे उन्होंने बोला अभी बाकी है ठहर जाओ अभी। लेकिन हिंदुस्तानी कहाँ मानते हैं, घुस गए बिल्कुल अंदर, और उन पुलिस वालों ने भी सोचा कि इंडिया में पहली बार ही किसी का ऐसा मेडल आ रहा है लड़की का, तो उन्होंने सारे रूल भी अपने ताक पे रख दिए, और मतलब हम बिल्कुल जैसे कि अपने नेशनल चैंपियनशिप में घेर के खड़े हो जाते हैं, इस तरह हम खड़े हुए थे वहाँ पे। मुझे अब लगता है कि शायद हमने उसे डिस्टर्ब भी किया थोड़ा, नॉट खाली मलेश्वरी को, बाकी को भी हमने थोड़ा डिस्टर्ब किया था, लेकिन उस वक्त अपनी इमोशन को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और अब जिक्र अभिनव बिंद्रा का। अभिनव जब अपने तीसरे ओलंपिक में भाग लेने बीजिंग पहुंचे तो उनकी दुनिया में रैंक 17वीं थी। उनसे पहले उनसे कहीं ज्यादा रेट किए जा रहे अंजलि भागवत, मानवजीत सिंह संधू और मनशेर सिंह मुकाबले से बाहर हो चुके थे। अभिनव ने जब फाइनल में प्रवेश किया तो उनका स्थान चौथा था, लेकिन वहीं उन्होंने अपने प्रदर्शन को एकदम उठा दिया। पहले शॉट ने उन्हें 10.7 अंक दिलाए और वो तीसरे स्थान पर जा पहुंचे। बिंद्रा जब चौथा निशाना लगा रहे थे तब तक वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुके थे। सातवें शॉट पर जब उन्हें 10.6 अंक मिले तो उन्होंने लीड ले ली। आखिरी शॉट के लिए अभिनव ने जब निशाना लिया तो पूरे भारत की एक ओलंपिक स्वर्ण पदक की भूख उस क्षण विशेष में समाहित हो गई। कुछ सेकंड बाद जब स्कोरबोर्ड पर 10.8 फ्लैश हुआ और ये तय हो गया कि बिंद्रा ने भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया है, तब भी उनकी भाव भंगिमा में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मुट्ठियों को भीजकर धीरे से हिलाया और बहुत मुश्किल से एक मुस्कान उनके चेहरे पर आ पाई। वहां मौजूद कुछ भारतीय पत्रकारों को ये थोड़ा अटपटा सा लगा। उन्होंने इसके बारे में उनसे पूछ ही लिया। अभिनव बिंद्रा का जवाब था,
I don't know what I was expected to do. I think everybody should be happy that I won the gold medal. Let's focus on that. I didn't want to. What do you want me to do? You want me to jump up and down?
मैं नहीं जानता कि मुझसे क्या उम्मीद की जा रही थी। मैं समझता हूँ कि हर एक को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैंने स्वर्ण पदक जीता। क्या आप मुझसे चाह रहे थे कि मैं स्वर्ण पदक जीतते ही कूदना शुरू कर देता? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझ में अपने प्रतिद्वंदियों के लिए सम्मान है। उन्होंने भी उतनी मेहनत की है जितनी मैंने।
पदक पाते ही बाहर आते ही भारतीय शूटर्स का पूरा दल अभिनव की तरफ भागा। अभिनव बिंद्रा जब निशाना साध रहे थे तो दर्शक दीर्घा में सबसे आगे बैठे थे 1978 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले शूटर और भारतीय ओलंपिक संघ के उस समय के महासचिव रणधीर सिंह।
ये जो एक दफा जो शुरुआत हुई है, जो हमारे लोगों के दिमाग में था कि कोई ऐसा कोई जिंक्स बैठा है कि जिस कारण हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, वो आज शूटिंग ने और अभिनव बिंद्रा ने कर दिखाया कि ये चीज पॉसिबल है। और मेरा दिल ये कहता है कि जो हिंदुस्तान का जो खेल है सारा सिस्टम बदल जाएगा।
रणधीर सिंह के साथ मशहूर खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम ने भी उस दिन इतिहास बनते देखा।
हम सब जैसे जर्नलिस्ट एक लाइन में बैठे हैं, उसके हमारे पीछे जो थे अंजलि भागवत और ये लड़कियां सीमा शरोर वाला लड़कियां सारी शूटर्स बैठ, और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर क्रॉस, हम सब ऐसे करके वहां बैठे हुए थे। और ये कि कभी भी उस मेडल आएगा चिल्लाएंगे, क्योंकि हमें चिल्लाने का मौका, ताली बजाने का मौका नहीं मिल रहा था। और जैसे ही मेडल आया वहां पे जोर जोर से हम सब जो पूरा, मेरे ख्याल हॉल में सिर्फ इंडियंस ही बैठे थे, और उस वक्त मैंने अचानक लगा मुझे कि मेरे को जरा आंसू आ रहे हैं देख के, वो फीलिंग जो झंडा ऊपर जब चढ़ रहा था, और मैंने सोचा कि मैं आंसू पूछूं तो देखा मैंने राइट लेफ्ट सेंटर जो थे सारे रो रहे थे वहां पे, सिर्फ मैं नहीं था। और एक बहुत बहुत बड़ा फव्वारा था जो खाली सजावट के लिए था, इसमें पानी आ रहा था और कमल के फूल वगैरह थे। थोड़ी गर्मी भी थी तो मैं और विमल मोहन थे NDTV के और कुछ लोग थे, हम सीधे कपड़े समेत वॉलेट अपने जेब में, हम सब खड़े हो गए पानी में, हम जोर जोर से नहाए, सारे लोग पूछ रहे हम पे फिल्म बना रहे कि क्या हो गया, हमने इंडिया का मेडल आया है, ये गोल्ड मेडल हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे। उसके बाद मैं और गगन नारंग बाहर सड़क पे पतंग उड़ा रहे थे हमारे किसी की लेके। तो ये बहुत एक अच्छा क्षण था कि मुझे बहुत लगा कि मैंने सिल्वर देख लिया, मैंने ब्रॉन्ज देख लिया, और अब बीजिंग में आके मैंने गोल्ड भी देख लिया।
जिस समय अभिनव बिंद्रा अपना स्वर्ण पदक ले रहे थे, हमारे एक सहयोगी ने भारत में चंडीगढ़ में टेलीविजन सेट के सामने बैठी अभिनव की माँ बबली बिंद्रा से पूछा कि अपने बेटे की इस उपलब्धि पर आप कैसा महसूस कर रही हैं?
बहुत खुशी का माहौल है और बहुत गर्व की बात है कि हमारे अभिनव ने इंडिया का नाम रोशन किया है। अब इस समय हम इस चीज को सिंक इन हो रहा है कि इट इज आर अभिनव हुज क्रिएटेड हिस्ट्री। जब वो लेन फोर में क्वालिफाई किया था तो सेम स्कोर था लेन थ्री और लेन फोर का, तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि अभिनव मेडल तो लेगा, और कलर ऑफ द मेडल आई वॉज नॉट श्योर। तो जैसे जैसे इसकी बड़ी कंसिस्टेंट फाइनल शॉट्स जाते गए जब ये दोनों टाई कर गए 8th एंड 9th शॉट में, फर्स्ट एंड द सेकंड पोजीशन दोनों का सेम स्कोर था, देन आई न्यू इट वाज गोइंग टू बी अभिनव।
बिंद्रा का फाइनल स्कोर था 700.5। एथेंस में अभिनव ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन वो सिर्फ सातवां स्थान ही प्राप्त कर सके थे। बाद में उन्होंने एक मशहूर जुमला बोला था, शूटिंग 99% भाग्य है और 1% ट्रेनिंग। उस 1% के लिए अभिनव बिंद्रा ने महीनों तक 7 घंटे शूटिंग अभ्यास और 2 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग ली थी। इस उपलब्धि के तुरंत बाद हमने बात की अभिनव बिंद्रा के पिता अभिजीत बिंद्रा से।
वो पिछले 14 साल से ये शूटिंग कर रहा है। इस शूटिंग में अप्स एंड डाउन बहुत हुए, इट्स जस्ट लाइक अ सेंसेक्स, पर उसने बहुत अचीव भी किया, वर्ल्ड चैंपियन बना। पिछले ओलंपिक्स में वो जीता हार गया, वो तब भी वो मेडल ले जाता, क्योंकि जिस फ्लोर पे वो खड़ा था वो फ्लोर वॉज वॉबलिंग। ये दुनिया ने आज एक्सेप्ट किया, इट वॉज अ फॉल्टी फ्लोर, लेकिन उसके बाद उसके अंदर लक्ष्य था कि मैं एक ओलंपिक मेडल जीतूं, गोल्ड, क्वेस्ट फॉर गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज गोल्ड।
बीजिंग में भारत को 2 कांस्य पदक भी मिले और दोनों एक ही दिन आए। सुशील कुमार ने 66 किलो वर्ग में कांस्य जीता तो विजेंद्र सिंह ने मिडिल वेट क्वार्टर फाइनल में इक्वाडोर के कार्लोस गंगोरा को हराया। 2012 के लंदन ओलंपिक में तो जैसे पदकों की बाढ़ आ गई। स्वर्ण पदक तो नहीं मिला, लेकिन भारत ने 6 पदक जीते, 2 रजत और 4 कांस्य। सुशील कुमार ने जब कजाकिस्तान के अक्जुरेक तंत्रारोव को कंधे पर उठाकर मैट पर पटका तो खचाखच भरे स्टेडियम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
The reversal comes from Kumar. He was able to counter attack and despite oh here we go, he lifts him, he brings him down on his front side for another point and there is blood from Tanatarov.
लेकिन लंदन की सबसे बड़ी याद थी जब योगेश्वर दत्त ने उत्तरी कोरिया के जोंग म्योंग री को 4 बार रोल कर न सिर्फ 1 साथ 6 अंक लिए बल्कि भारत के लिए कांस्य पदक भी जीता।
Wraps the legs up and he'll be turning. He's turning him. He's turned him once. Really trying to fight back. This could be the moment the bronze medal is won and lost. He turns him again and again and again and that's it. 6 points.
एक्सेलेरिना में भारत की मैरी कॉम ब्रिटेन की निकोला एडम्स के मुक्कों के सामने कमजोर दिखी, लेकिन तब भी कांस्य पदक जीतने से उन्हें कोई नहीं रोक पाया। शाम को लंदन के मशहूर हाइट पार्क में वहां रहने वाले मणिपुरी मूल के लोगों ने उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया।
वहां पे असली रूप मेरी कॉम का देखने को मिला। वहाँ खूब गाने गाए उन्होंने, डांस करा अपने मणिपुरी लोगों के साथ, खूब जोक सुना सुना के, मतलब उन्होंने पूरी एसोसिएशन को एकदम से पागल कर दिया था।
चलो रियो की 10वीं और आखिरी कड़ी में इतना ही। आज से 1 हफ्ते बाद ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में खेलों का महाकुंभ ओलंपिक शुरू हो रहा है। भारत ओलंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। देखना है क्या भारत ओलंपिक में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर पाता है या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के 120 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं होंगी इन खिलाड़ियों के साथ। रेहान फदल को चलो रियो से इजाजत दीजिए, नमस्कार।
चलो रियो की ये आखिरी कड़ी आप सुन रहे थे और ये कड़ी आप सुबह हमारी विश्व भारती सभा में दोबारा सुन सकेंगे। कार्यक्रम में इससे पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में भाजपा से निष्कासित दयाशंकर सिंह को बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया गया। दयाशंकर सिंह को उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गौमांस रखने के आरोप में मुस्लिम महिलाओं की पिटाई के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दी जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरने से 8 मजदूरों की मौत हो गई है। तुर्की में 21 पत्रकारों को नाकाम तख्ता पलट के मामले में इस्तांबुल की एक अदालत में पेश किया गया। पुलिस को अन्य 20 पत्रकारों की तलाश है। तुर्की की सरकार ने नाइजीरिया से उन स्कूलों को बंद करने को कहा है जिनका संबंध धार्मिक प्रचारक फतेहुल्लाह गुलेन से है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होने वाले हैं। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।